नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। श्री पुतिन आज राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम श्री पुतिन के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 बार मिल चुके हैं। वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संस्थागत संवाद तंत्र है। 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार $68 बिलियन से ज्यादा के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। दोनों नेताओं ने 2030 तक व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्री पुतिन ने भारत आने से पहले एक टीवी चैनल में दिए गए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आसानी से दबाव में आने वाले नेता नहीं हैं और भारत के लोगों को उन पर गर्व है। श्री पुतिन ने भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अमरीका की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि यदि अमरीका को रूस से तेल खरीदने का अधिकार है तो भारत को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। रिजर्व बैंक ने आज नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 5.25% कर दिया है। इसके साथ ही स्थायी जमा सुविधा दर 5% पर निर्धारित की जाएगी, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 5.5% पर समायोजित होगी। 6 सदस्य समिति ने दर में कटौती के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। आज मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने भी तटस्थ रुख जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को पहले के 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। ये आरबीआई के पहले के अनुमानों से लगभग 0.5% अधिक है। गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद, गांधीनगर, वावथराद और बनासकांठा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनका अहमदाबाद नगर निगम के कई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं और जनसुविधा से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने का कार्यक्रम है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने विमानन कंपनी इंडिगो को तत्काल परिचालन सामान्य करने और हवाई किराए में किसी तरह की बढ़ोतरी न करने का निर्देश दिया है। श्री नायडू ने कहा कि इंडिगो उड़ान सेवाओं को रद्द करने के बारे में यात्रियों को पहले सूचित करे और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक संगठित अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की 22 टीमों ने बिहार के नालंदा, शेखपुरा और पटना, उत्तर प्रदेश के औरैया और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर छापे मारे। भारत में मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे संचार उपकरणों के साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की वर्ष 2023 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में दर्ज कुल साइबर अपराध के मामले 52,000 से अधिक थे, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 86,000 से अधिक हो गए। ये जानकारी गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज चेन्नई में भारत का सामना बेल्जियम से होगा और ईस्ट बंगाल ने कल AIFF सुपर कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में पंजाब FC को 3 गोल से हरा दिया। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।